શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 105 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 7.
इसके ज्ञान के संपर्क में आती है उनकी योग्यता ही है जिसे ऐसी बन गई है, तो छोटी मोटी सब बातों में, छोटे मोटे सब प्रसंग में, सब देव के प्रकार में वो ठीक है या अठीक है, ऐसा उनका भाव हो जाता है। मैंने ठीक अठीक पढ़े की उसकी बुद्धि हो गई है, मैंने उसी अभिप्राय से हर पदार्थ को विषय करता है कि ये ठीक है या अठीक है, दो में से एक भेद पड़ जाता है। तो इनकी जागृति वहां है कि मुझे ऐसा नहीं करना, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, इसलिए मात्र जानना, सिर्फ जानना इतना ही मेरा कार्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार का परविषय ज्ञान के सामने आए तो मेरा तो सिर्फ जानना होए और किस्त अनिष्पणा नहीं होए, एक साथ जो बात है, भेद भले ही दो है लेकिन एक ही परिणाम का दो भेद है कि मात्र जानना और इससे अनिष्ट नहीं होना, ऐसा मेरा परिणाम का ऐसा उपयोग हो गए परिणाम में तो सभी में हो गई, इसलिए एक पल भी ऐसा क्या है, एक पल का ही मतलब है तो सब उदय में वो जागृत रहता है। तो इस जागृति से क्या होता है, ऐसा जागृत परिणाम जिसको होता है वही मुमुक्षु है। जागृति के अभाव में मनुष्यता कहाँ रही और क्या रही मनुष्यता, फिर मनुष्यता किसको कहे कि जागृति ही मनुष्यता है। और इससे क्या होता है कि इसका जो राग द्वेष रूप विभाव रस है वो विभाव रस फिक्का पड़ने की प्रक्रिया है। और जहां तक कषाय रस विभाव फिक्का नहीं पड़ता वहां तक दर्शन मोह जो है वो शिथिल नहीं होता, और जहां तक विभाव रस मन नहीं करता गलता नहीं वहां तक मनुष्यता की भूमिका में जो ज्ञान की स्वच्छता और ज्ञान की निर्मलता जो है वो नहीं आती है। और ज्ञान की जो निर्मलता भूमिका में नहीं आती है तो अपना जो ज्ञान स्वभाव है वो तो उसमें गलतता नहीं प्रतिभा होता है, और वो अपना आत्मा कैसा है इसका सही निर्णय पर वो नहीं पहुंचता, यथार्थ निर्णय पर वो नहीं आ सकता। और जहां तक निर्णय नहीं होता है तो इस आत्मा के सन्मुख होना और इसका आत्मसदृश आत्मभाव परिणमन होना ये संभव नहीं है। तो ये मुमुक्षुता का खास लक्षण दिया कि एक पल भी उपयोग पूर्वक बिताने वाला ही होता है। मैंने हर क्षण में जागृत है, उपयोग है, जागृति वाला है, और जागृति से ही ये अपने कषाय को तोड़ता जाता है। ये खास प्रक्रिया है मनुष्यता की भूमिका, उसको पात्रता का लक्षण में स्मृति ने जान लिया है। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि ऐसा जीव भगवान महावीर के बोध का पात्र है, पात्र मैंने लायक है, अर्थात संयत दशा का ये पात्र है। कोई अनंत जन्म मरण का खेल करने वाला संयदान ज्ञान और संयम दर्शन उसको ही प्राप्त होगा, दूसरों को प्राप्त होगा। नंबर 5 है एकांतवास की प्रशंसा करने वाला, यह भी मनुष्यता की भूमिका में एक खास लक्षण है। मनुष्य है वो एकांत में अपना काम करना चाहता, प्रवृत्ति बढ़ाना नहीं चाहता, भले ही सत्समागम में अनेक मनुष्यों से मिलना हो, लेकिन अपना समय की जिसको कीमत है, जिसको बहुत काम करना अपना काम बाकी है, बहुत बाकी है, ऐसा जिसको बाकी हुआ है, वो परिचय बढ़ा के अन्य अन्य लोगों से मिलके अपना समय को गुजारना नहीं चाहता। जब उसे किसी से प्रयोजन नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, और प्रयोजन अपने आत्मा का हित करना एक ही जिसका प्रयोजन है, उसको दूसरे दूसरे से क्या प्रयोजन है। अनेक लोगों से मिलने से अपना टाइम जो है, समय है, वो गुजरता है, और एकांत में अपनी आत्मा का अंतर अभ्यास करना जो है, ज्ञानाभ्यास करना है, विशेष अंतर चिंतन करना है, भोजन करना है, अपने अपने परिणामों को, भावों का अवलोकन करना है, इसमें तो उसे एकांत चाहिए। लौकिक में ये होता है, जितना ज्यादा परिचय, जितना ज्यादा ओखान हो, क्या कहते हैं ओखान को, उतना अनेक प्रकार का काम खलटने में सहयोग मिलता है, लेकिन ये तो लौकिक प्रयोजन की लाइन होगी। तो ठीक है, इस लाइन का काम हुआ तो वहां अपना पहचान वाला है, इस लाइन में कोई काम होगा तो वहां अपना पहचान वाला है, और मनुष्यों में भी विभिन्न विभिन्न विविध प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, सबों से पहचान रहेगी तो कोई ना कोई काम पड़ेगा तो अपना काम हो जाएगा। तो कहते हैं कि क्या तुम भोग की प्राप्ति के लिए इधर आया हो, या कोई सांसारिक प्रयोजन के लिए इधर आया हो। ऐसा ही प्रयोजन हो तो बहुत सी क्लबें चलती हैं, सभी अपने रोटरी क्लब में, वो क्लब में, वो क्लब में है कि नहीं लग रहा। बहुत से लोग मिलेंगे, सबके परिचय होंगे, लेकिन ये लौकिक लाइन से विरुद्ध अलौकिक कार्य पद्धति का एक क्षेत्र है, जहां एकांत में अपना काम करने का ध्येय है, तो आत्मार्थी है, वो एकांत की प्रशंसा करेगा, मतलब एकांत को चाहेगा और एकांत की अनुभवना करेगा। तो ज्यादा परिचय बढ़ा के उसे कोई प्रयोजन नहीं है किसी से, तो बैंक में मिल गया कि जिसको इस जगत में से कुछ नहीं चाहिए, और एक अपनी आत्मा ही चाहिए, अपना आत्महित ही चाहिए, वही जीव खास पात्रता वाला है, और वो उसे भी उन्होंने वहां चर्चित किया है। तो जहां ऐसा उनको प्रश्न पूछा गया है कि ये सब बातें जो है तत्वज्ञान विषय हम समझते हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ कार्य नहीं होता, और साथ ही ऐसी उलझन बताई गई है कि इन सब बातों को हम बुद्धिगोचर करते हैं, हम समझते हैं, फिर भी हमारा कार्य क्यों नहीं होता है, और कहीं ना कहीं भूल रह जाती है, और कोई ऐसी भूल जो रह जाती है जो हमारे ध्यान में, हमारे लक्ष्य में आती है, तो इसके लिए हम क्या करें। हम ऐसी कोई लाचार परिस्थिति में आ गए हैं कि ये जो बुलावे के कोई स्थान है, इस स्थान में हम आ जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ भूले। ऐसे उलझन में आए हुए जीव का ये प्रश्न है, वहां उन्होंने ये बात कही है कि ऐसे तो भूलने का बहुत स्थान है इस मार्ग में, आने वाले जीव को भी अनेक स्थान में बुलावा हो जाता है, लेकिन वो जीव नहीं भूलता है जो खास पात्रता वाला है। वो ऐसा करके प्रतीत कर दिया है कि पात्रता वाला जीव की भूल नहीं होती, और इसकी भूल नहीं होती तो सीधा सीधा अपने लाइन को भीतर में पकड़ता है और उसकी कार्य स्थिति हो जाती है। वो पात्रता कौन सी है कि जिसको इस विश्व में से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना प्रयोजन से मतलब है कि मेरी आत्मशुद्धि कैसे हो, जिससे मैं इस नवभ्रमण के चक्कर में से छूटके अपने निजानंद की अंतर की शांत दशा को प्राप्त करूँ और उसमें मग्न रहूँ। मुझे मेरी आत्म शांति चाहिए, इस जगत के अनेक विध विषय के संयोग पाकर भी मुझे शांति नहीं मिली है, ऐसा जो उनको महसूस होता है तभी वो आत्म शांति का मार्ग पकड़ता है, जिससे पहले वो आत्म शांति का मार्ग पकड़ता है। ऐसे जीव को एकांत प्रिय होता है जो एकांत में अनुभव ना करता है। ये साथ में बोल में लिया है, साथ में बोल में लिया है कि सारी प्रवास का मंदिर सिर्फ प्रवास को दृष्टा है तो आता है। इसमें दो प्रकार के कारण है, एक तो तीर्थ स्थान वो है जहाँ महापुरुष ने निवास किया हो, जहाँ महापुरुष ने सिद्धि प्राप्त की हो अपनी आत्मा से, या सिद्धि स्थल हो जहाँ से तीर्थंकर मुनि वहाँ सिद्धि को पधारे हो, तो वहाँ उनके जो बाह्याचरण है उनकी स्मृति आती है कि ऐसे ऐसे परिश्रम हुए, तो उस परिश्रम में वो अड़ी रहे, अचल रहे और अपना साधन करते रहे। बाह्याचरण तो कथानुयोग में प्रसिद्ध होता है, और फिर स्थान कहाँ से ऐसा इतिहास बना है, और उसी स्थान में उन्होंने अंतरंग साधना के साथ साथ ही बाहर में डिगे नहीं और अंतरंग में अपने परमात्मा को वो साधते रहे। ऐसे निर्मल परिणाम यहाँ ही स्थान में उन्होंने कर किए थे, ऐसा स्थान के निमित्त उन महात्माओं की उन संतों की उन तीर्थों को उनकी स्मृति आती है। ऐसे स्मृति के निमित्त होते हैं तीर्थाद स्थान, इसलिए वहाँ जाना वो पसंद करते हैं, उसको मन आता है। एक तो यही कारण, दूसरा कि वहाँ ऐसे स्थानों में परमात्माओं का आवाज न रहता है, परमात्मा ऐसे स्थानों में आते जाते रहते हैं, खुद का भी जाना होता है तो संभव है कि वहाँ तक समागम मिल जाए, परमात्मा की भेंट हो तो उनको उनसे समागम मिले, उनकी पहचान मिले, और जिसका अपने प्रयोजन से शिक्षा और सूक्ष्म दृष्टि से इस मार्ग में चलने का अभिप्राय है, ऐसे जीव को धर्मात्मा का दर्शन होता है, वो अपना प्रयोजन साथ देता है। वो अनादि से जो अनजान मार्ग है उस मार्ग की जानकारी, ज्ञान की पहचान और उसके मार्ग के विषय में उसको रास्ता खोलने के लिए जो भी उन उनको शिक्षा मिलती है, बोध मिलता है, ऐसा प्रश्न प्राप्त होने का ये निमित्त बनता है। ऐसा जानकर भी शिक्षा की शिक्षा दीक्षा में जाने का भाव आत्मा को कहलाता है, ये भी उसको वहां जाने का एक भीतर में अभिप्राय रहा है, अपना आशय रहा है जाने के लिए। ये कारण मैंने सिर्फ कृष्ण वंदना ही करनी, और कृष्ण वंदना में जो भाव होते हैं, शुद्ध भाव होते हैं, इतना ही मर्यादित प्रयोग से नहीं जाता, लेकिन इसके पीछे भी अपना आत्मार्थ का प्रयोजन है, ऐसा प्रयोजन भीतर में रखते हुए उसका जाना होता है। ये आठ नंबर का बोल हुआ। नंबर नौ, सहार और नियम संयार का नियम रखने वाला। सामान्य तौर से जिसकी जिसका वृत्ति भाव ज्यादा होता है वो खाने पीने में कंट्रोल नहीं रख सकता, मैंने नियम नहीं रख सकता, नियम मैंने कंट्रोल, और जिसका खाने पीने में की वृत्ति में कंट्रोल नहीं रहता वो ज्यादा खाने का उसका हो ही जाता है, सही रूप से स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसकी नींद वगैरह भी बिगड़ती है और सभी प्रकार की गड़बड़ी पैदा हो जाती है, तो वो अपने साधन में छूट जाता है। जो व्यक्ति देह में नहीं जानी चाहिए और आत्मा में संलग्न होनी चाहिए, ऐसा जिसका अभिप्राय है वो देह के विषय में भी गड़बड़ी कम हो, ऐसा सामान्य तौर से लक्ष्य रखता है। तो ये तो एक सामान्य बात है कि जिसका आहार नियमित हो उसका निहार आदि भी नियमित रहता है। शरीर की विकृति में गड़बड़ी का मूल तो पेट ही है, ये तो आयुर्वेद के प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पेट से ही सब गड़बड़ी होती है, क्योंकि जो नए परमाणु हैं वो आहार खान पान मिल जाते हैं, तो उसमें जिसको कंट्रोल हो गया वो तो नियमित रूप से है मर्यादा में खाएगा। ये एक शरीर का विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है, जिसमें ये बात अनुभव से भी समझ में आती है कि जो कम खाता है उसको प्राय गड़बड़ी नहीं होती। तो पूर्व कर्म का वे रोग इसकी बात है, रोग होने का तो अनेक दिन कारण है, इसमें पूर्व कर्म भी एक कारण है, इससे भी रोग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खाने में नियमित रहने वाले को रोग हो ही नहीं, पूर्व कर्म की असाता का उदय आता है, रोगादी का उपयोग उपद्रव कहीं से भी हो जाता है, लेकिन ये बात है पूर्व कर्म की। सामान्य तौर से जिसको अपना उपयोग को ठीक स्थान में लगाना है, यथास्थान में लगाना है, ठीक करना है, उसको शारीरिक असाता के वेदन से दूर रहने के लिए और वृत्ति को भी मर्यादा में रखने के लिए एक आर जार निहार का नियमित रखना अनुकूल है, क्योंकि उसमें शरीर के अलावा वृत्ति का भी नियमन है, वृत्ति का भी कंट्रोल है, इसलिए आत्मा की जो होता है वो तो सहज रूप से इस विषय में नियमित करने वाला रहता है। नौ नंबर का है सामान्य बात, दसवें नंबर का जो विषय है वो मनुष्यता की भूमिका में एक अपनी गुरुता को दबाने वाला, दबाता है, छुपाता है, दूसरे मनुष्यों से अति अधिक गुण संपन्न होने के बावजूद भी उसको दिखावा नहीं करता, और गुण का दिखावा करके उसको किसी से कुछ लेना नहीं है। बाई चीज का लेना देना तो खैर दूरमा, लेकिन उसको मान सम्मान भी नहीं चाहिए। खास करके मनुष्य गति में मान की प्रकृति का दोष सहज रूप से गुणों को बन जाता है। सीरीज में माया प्रकृति का परिणाम है, नारकी में क्रोध प्रकृति का परिणाम अधिक है, और वेद की गति में लोभ की प्रकृति का ऐसा जीव के साथ प्रेम है, इतना एक जैसे वस्त्र में ताने वाने जैसा हो जाता है, एक रूप जैसा सहज रूप से उनको पैदा हो जाता है। मनुष्य में ये मान का जो विषय है वो सबसे अधिकतर नुकसान वाला है। मनुष्य है, आत्मा की है, अपने प्रयोजन में अधिक विचक्षण है, अपना प्रयोजन है आत्महित करने का, उसमें वो अधिक विचक्षण हो गया। तो विचक्षणता में उसने क्या क्या किया, वो जानता है कि अगर मेरा गुण के विषय में लोगों को पता चलेगा तो मान सम्मान देने लग जाएंगे, मान सम्मान देने लग जाएंगे तो उसमें कोई मुझे मिलने वाला नहीं है, मेरा आत्महित उसमें होने वाला नहीं है। संभव है कि कोई अहंकार बढ़ेगा तो नुकसान करेगा। इस नुकसान से बचने के लिए वो अपनी गुरुता को दबाता है, छिपाता है, दूसरा नहीं जाने ऐसी अंतरंग निष्क्रियता में वो बरतता है। और कभी फिर भी तो पुण्योदय से उनको मान सम्मान का प्रसंग हो ही जाता है, नहीं चाहते हुए भी लोग उसको मान सम्मान कर लेता है, तो वो भीतर में अंतर में बहुत अत्यंत जागरूक रहता है। वो जानता है कि ये सब जो खेल है वो पुण्य के हैं, उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ज्ञान ही नहीं देता है, जैसे खाते वक्त ध्यान खाने पर नहीं रहता है तो स्वाद का ख्याल खुल जाता है, बनता है कि नहीं बनता है। अन्य चिंता वक्त भी ऐसा तो होता है, तो जो अपने हित में जागृत हो, जो अपने हित में सावधान हो, वो क्या अपने जागृति में रहता है तो वो ध्यान खुल देता है। मान सम्मान साथ ही किसी ने अपमान कर लिया तो उसकी भी दृष्टि में वो तो दोनों सापेक्ष है। जिसको अपमान सुहाता नहीं उसको मान की जरूरत है, वो मान के साथ है, लेकिन क्या करे, क्या सामान्य नहीं रहे हो, अपना मान खो के काम करे, ये भी ऐसा भाव आता है जीवों को। लेकिन जिसको अपना आत्महित का प्रयोजन से ही मतलब है, उस पर उसका ध्यान है, उसको मान सम्मान पर इतना ध्यान नहीं है। वो समझता है कि पुण्योदय से मिथ्या दृष्टियों को, गरीब मिथ्या दृष्टियों को, और कैसे भी नित कर्म करने वाले को भी मान सम्मान तो लोगों मिल जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है। और कोई पाप पूर्व पाप का कर्म का हुए हो तो अच्छे सज्जन को भी अपमान हो सकता है इसका। क्योंकि शास्त्र कहेगा नहीं कि तुम यहाँ अर्थ खत्म में भूल करता है, तो शास्त्र नहीं कहेगा। प्रत्यक्ष पुरुष है वो बता देगा कि तुम यहाँ भूल गए। एक सजीवन मूर्ति है, सत्पुरुष है, एक सजीवन मूर्ति है, तो जो जीव को मार्गदर्शन के लिए दूसरे किसी भी साधन को इसकी पूर्ति मिलती है, ऐसा देख करके और ऐसा अनुभव करके उन्होंने बात को लिखी है। तर्क संभवित है कि श्रीमद जी को तो कोई सदगुरु मिला नहीं था इनको, हो फिर भी ऐसी ऐसी बातों कैसे लिखती है कि कभी तो वियोग में भी संयोग की कीमत बढ़ जाती है तो नहीं। उनको जाति स्मरण ज्ञान था, शुरू में बहुत सत्समागम किया था और आराधन भी प्रकट किया, बाद में वो ठीक हुए हैं और भटकते भटकते भी मनुष्य हो गए। रायचंद्र नाथ भाई ठीक है, अपन जो भी बात करेंगे उसमें वहाँ जिक्र करेंगे कि क्या क्या किस कीमत पर इस बात में उन्होंने की है। वर्तमान भाव में कोई सत्पुरुष का योग नहीं मिला है, फिर भी उन्होंने किसी ने उसका जो मूल्यांकन किया है वो अलग किस्म से किया है। ये दस दस बातें इसने लिखी है, फिर भी उन्होंने इस बात को अग्रता दी है, इसके पीछे उनका बहुत बहुत गहरा अनुभव रहा है। हम लोग तो ज्यादा पुण्यवंत है कि हमें इस भाव में प्रत्यक्ष ऐसे ऐसे पुरुष का सदगुरु का ये मिला, कितना लाभ खाया कितना लाभ नहीं खाया ये हर एक के लिए व्यक्तिगत अलग अलग बात है, लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि ऐसा योग चतुर्थ काल में भी दुर्लभ है, पंचम काल में तो दुर्लभ से भी दुर्लभ हो इसमें कोई नई बात नहीं है, फिर भी ऐसा दुर्लभ से दुर्लभ लोग नहीं प्राप्त हो सकता और अभी भी हो सकता है। ये जो गुरुदेव की देन है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से योग को लिया, साथ ही अभी भी योग है ऐसा कहा। हम तो सौंदर्य इसलिए उनको पालन कर सकते हैं कि उनको प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग मिले, क्योंकि उनके एक वचन में भी हमें डालने लगे हैं। मिथ्या दृष्टि कितना ही शास्त्र ज्ञान भाई हो, विद्वान हो, पंडित हो और हजार लाख बात करने वाला हो, लेकिन देखना लड़की का सामर्थ्य नहीं करना कभी भी उसमें नहीं होगा। और सत्पुरुष के एक वचन में कभी गोली लग जाती है तो उसका संसार खत्म हो जाता है, ऐसा उनका बहुत भी है और ऐसा रहस्यों का संकेत कितनी भी है सत्पुरुष ने विवाह स्वागत नहीं है। सत्पुरुष को बहुत देखा नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि कोई मनुष्य हमारे पास आए, लेकिन मनुष्य की यही भावना हुए बिना उसको बोध परिणित होता नहीं। ऐसी ही एक वास्तविक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका महत्व बताया जाता है। उन्होंने जी जी इसका इतिहास जो हमारी जानकारी में वो देखना ही है कि 7 साल की उम्र में जो 7 साल के बच्चे थे, एक प्रसंग बन गया पड़ोस में, तो बुजुर्ग आदमी था वो मर गया, उनका देहांत हो गया, तो अंतिम क्रिया के लिए वो विकसित हुए और ये नाम वगैरह के सब कार्य होने लगे, कि दिन का शाम से पहले पहले का समय था 4 बजे 5 बजे का, वो भी खेलते खेलते घर पे आए। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, किशोर होता है बालक को ऐसे किशोर उठा हुआ कि क्या हो रहा है। उन्होंने पूछा पिताजी को कि क्या हो रहा है, किशोर होते हैं सर, ये क्या है, उनको बांधते हैं, उसमें क्या है, उसको चाचा मामा कहते होंगे तो चाचा को क्या हो गया, क्यों उसको बांध के ले जाते हैं। तो बालक बालक को वैसे ही बैठो होता है, ऐसा समझते पिताजी साहब हाँ उनको मजे हैं, उनको उसके पीछे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछना है कि काम हो गए तुम खाना खा लो, घर में जाओ घर में चले जाओ खाना खा। तो उन्होंने और दीदा था किशोर के पास कर लिया था कि ये मर गया मतलब क्या हो गया, मर जाना क्या चीज है, तो वो मर गया मर गया तुमको समझ नहीं पड़ेगा, तुम खाना खाना खाओ खाना खाना करके उसकी जिज्ञासा को तुष्ट करके करने के बजाय जवाब नहीं दिया, वो समझे कि डर जाएंगे बच्चों को डर लग जाएगा भय हो जाएगा, तो ऐसे जवाब नहीं दिया फिर घर में धकेल दिया। तुमको जो किशोर रखती है और सफेद हो गई, तो ये जो देह को बांध करके ले गई निशान में छोटा सा भवानिया है, ये जन्मस्थल है मतलब में छोटा सा गांव है, लेकिन इतना छोटा ही है मशान के बाद नहीं होता है, ऐसे शहर की तरफ आएंगे जाना नहीं पड़ता, लेकिन तो मशान में ले गई उसको पता चला था मशान में ले गई वहाँ उसको जला लेंगे, उसका पिछले जो सचे हो गया वो पीछे पीछे शाम को बात हो गया अंग्रेज में करिए। तो जहाँ उसकी अंतिम क्रिया हो रही थी हमारे बबूल का पैर था उसको करिए, क्योंकि चले जाते तो कोई देख लेते तो वहाँ से भी भगा के निकाल देते, तो उसको उनकी आकांक्षा भी देखने की, तो बबूल के पैर से करके वो वहाँ से वो देखने लगे कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि उनके देह को किताब पर खिलाया गया, तो सबको मालूम है कि किताब को खिला होती है जमी ला दिया, वो जाते थे खिलाते थे वो करते थे, तो विचार में गए विचार में कर दिए सात साल समय में कि ये क्या हो रहा है। ये चलते थे पीते थे कभी उनको अग्नि लगाते हैं फिर भी प्रतिक्रिया में हो रही है, आदमी डरता है तो बढ़ता है, थोड़ा भी उसको गर्मी लगता है तो उनका बालक भी एक साल दो साल का होता है वो वहाँ से रहता है, उसको होता नहीं क्या बात है, उसकी गहराई विचार की गहराई में चिंतन में चले गए। उनकी जो स्मृति है वो भी स्मृति का पर्दा हट गया, स्मृति हो गई स्मृति भी बहुत लंबी पड़ी होगी, कितने भाव की स्मृति आ गई उसको ये लगा तो हो मैं कहाँ 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 भटकता 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 भटका इधर आया हूँ, अब तो मुझे मेरा कल्याण कर देना चाहिए, वरना ये जो भटकन है वो मुझे जीवन। तो उसी उम्र में उसने कुछ ऐसा सुना है कि अपने माता पिता से मेरा भी मांगी थी कि मुझे तो प्यार भी हो करके अपना हित कर देना है, मेरे काम विकास करने का भाव उसने प्रतिज्ञ किया था, उसी उम्र में मनाई कर दी क्या समझते हो इसका संस्कार है अपना काम करो, लेकिन उनकी जो विचार देखा है तो पूर्व संस्कार वक्त बहुत जागृत हुई थे और 15 साल की उम्र में उनको कितना कितना विवेक हुआ है, दूसरे दिन का एक कार्य है तो पुण्य के लिए पुण्य चीज के लिए मान रखेंगे, इसमें सिद्धांतिक बातों की और 1000 साल की 16 साल की उम्र में सारे विश्व को पकड़ने के लिए जो फाइट होते हैं उसकी उम्र में तो यही होता है कि जैसे मैं ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ, उस उम्र में वो लिखते हैं कि लक्ष्मी ने मिली है रोजगार का क्या मिल गया, ये जो संसार के चक्कर बढ़ाना मित्र है ऐसा करके बहुत विवेक वाली बातें उन्होंने 15 साल की उम्र में लिखी है। प्रवास से इनका चिंतन मंथन बहुत गहरा खुला है अपन भी जो पढ़ रहे हैं वो 23 साल की उम्र की लेख में चली है उस उम्र में। आगे जाके आगे के साल में तो संजय ज्ञान की प्राप्ति करने वाले उनकी इसके पहले कितनी यथार्थ विचार था समझन भी दो तरह की है, यथार्थता और गैर यथार्थता में कितनी यथार्थता है उनके समय से बहुत गौर विवेक इस छोटी उम्र में प्रकट हुआ है और विषय की गंभीरता को कितना गांधी से स्वस्थगत करते हैं ये सब उनके लेख में मिलता है। जी हाँ उन्होंने नहीं लिखा है। हाँ वैसे वेदांत के बड़े विद्वान थे जिनकी देर थी उसमें कोई शुभ हो के विषय में चर्चा कर रही थी तो उनका ये सब निकला था वो उनके ग्रंथ में मिलता है पता व्यवहार भी चला है उनके साथ जो गोवर्धन राम त्रिपाठी के भाई थे वो तीन भाई बहुत बड़े विद्वान थे विद्वान थे नामी विद्वान थे उनकी उम्र में तो वो छोटे उम्र में थे बड़े उम्र में थे। उन्होंने उसमें एक पत्र में लिखा है कि पूर्व भव है इसका मैं अनुभव से हाँ भरता हूँ। क्या कहा? पूर्व भव है इस बात की मैं अनुभव से हाँ करता हूँ। मेरा अनुभव कहता है कि पूर्व है पूर्व के विषय में वो अनुभव पूर्ण बात करता हूँ। वैसे तो उनके ज्ञान की निर्मलता बहुत थी पर अन्य प्रकार की भी जिस की दिक्कत है ऐसी उनकी स्थिति थी तो उस जमाने में तो वो एक चमत्कार पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो पाए हुए और गांधी जी जैसे मेधावी बुद्धिमान व्यक्ति उनको गुरुकुल मानते थे। गुरुकुल मानते थे इतनी ही जब वो अपने जीवन में उधर आए थे तब उन्होंने उनकी सलाह ली है उनसे मार्गदर्शन मांगा है। उनके भी महात्मा गांधी के 4-5 जो पत्र है वो उनके बड़े वॉल्यूम में अभी भी मौजूद है और काफी धर्म के विषय में भी प्रश्नोत्तर चला है और अपने खुद के विषय में भी प्रश्नोत्तर चला है। उनका बहुत सुंदर उत्तर बुद्धि के इच्छा के लिए कहते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस की जिसको हो सकती है ऐसा बुद्धिमानी के हिसाब से भी ऐसा उत्तर आया है और पारमार्थिक दृष्टिकोण साथ ही इतना ही संलग्न रहा है उनके हर उत्तर में। अभी भी उनका उत्तर पढ़े तो उतनी ही उसमें मिलता है बाल मिलता है ऐसा उत्तर उन्होंने गांधी जी के उत्तर किया है पत्र में भी मौजूद है। और कभी भी थे छोटी छोटी वैसे वो इधर में जाते थे इधर उत्तर गुजरात में इधर है वहाँ भी अपने दिगंबर मंदिर है 5 मंदिर में मैं गया हूँ उसमें वो गांव के नेताओं के नजदीक में पहाड़ी में छुपी थी इस पहाड़ी में वो ध्यान करने के जाते थे एकांत में। इस वक्त जो लोग उनके समागम में आए उन्होंने ये कहा है कि हमारे पूर्वकाल में हम यहाँ आए हैं और ये हमारे पूर्वकाल के वैराग्य का स्थल है। ये पहाड़ी है वो हमारे वैराग्य का स्थल है ऐसा करते उन्होंने निर्देश किया। इसलिए हमको ये स्थान बहुत जस्ता है पूर्व संस्कार के हिसाब से और हम बार बार उनमें आते हैं किसान पर जाना भी करते हैं। वहाँ भी एक आश्रम लगा हुआ है और वहाँ से जो शास्त्र भंडार है इधर के अपने विजयनगर मंदिर में पाठशाला है बगल के मकान में वहाँ शास्त्र भंडार है गए ना तो वहाँ उन्होंने बताया था कि इस जगह शास्त्र पड़ा है द्रव्य संग्रह पड़ा है उसको ले आओ ऐसा कैसे मंगाया था। पहले जो थे वो इधर में आए तो पाठशाला वगैरह में गाँव में नहीं गए थे फिर भी घर पे बोले कि इधर एक जो पाठशाला है, शास्त्र भंडार है, शास्त्र भंडार में द्रव्य संग्रह इस जगह पड़ा हुआ है, ऐसा करके बताया। इस समय से ऐसे कोई सबूत है वो बताते हैं कि किसी एरिया में वो प्रूव हो करके वो आया जाया करते थे ऐसा, लेकिन उन्होंने तो क्या है कि जाति स्थान वाली बात है तो चमत्कार जैसी है, इसलिए लोग को अधिक आकर्षण पैदा होता है, तो लोग ज़्यादा परिचय करने लगते इकट्ठे हो जाते हैं और बिना मतलब के बिना उनके प्रश्न पूछ लेते हैं और टाइम खराब करते हैं अपने गुजार कर, इसलिए तो बहुत से ऐसी बातों ने उसमें छिपा दिया है। जैसे ज्योतिष वगैरह के ज्ञान था जैसे उसको सतावधान की कैसे स्थिति थी, 18 साल की उम्र में मुंबई में सतावधान किए ज्योतिष रूप में फंक्शन दिया तुम्हारा, तो वो बोले कि हमको तो शस्त्रावधान करना हो तो हमारे लिए बहुत आसान है, ऐसा करके बोले थे। सतावधान नहीं शस्त्रावधान, 1000 चीज को 1 साल का ज्ञान में मिले, उसमें भी कई बातें तो समझदार जैसी थी कि जिस भाषा में वो पढ़े नहीं थे उस भाषा में ऐसा वो उत्तर देते थे, उस भाषा में प्रश्न आते थे उसका उत्तर देते थे, उत्तर ही देते थे नहीं, इनमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो उसको बता देते थे लेकिन उसने यहाँ भूल किया है। मैंने समझदार जैसी कई बातें उनके जीवन में नहीं, जब लोग उनके पीछे बहुत लगते मान मान से तो इच्छुक नहीं थे, अपने आत्मा को हित करना चाहते थे, तो ये सब बातों को छुपा करके सबों को ये जवाब देते हैं कि ऐसी बात नहीं पूछना, फिर भी पूछेंगे तो हम उसका उत्तर नहीं देते। आज भी बैठे को जाति स्मरण के विषय में कोई पूछते हैं फिर जवाब नहीं देते, कहते हैं कि जाति स्मरण के विषय में उनको पूछना जवाब नहीं देते, क्योंकि लोगों को एक चमत्कार ऐसी बात लगती है, उनकी जो आकांक्षा है खुशबत बढ़ जाता है, तो फालतू की बात है इसमें क्या रखा है परमार्थ के हिसाब से तो उसमें कुछ नहीं रखा है, इसलिए वो लंबा तो नहीं है ऐसा कह ही होता है। वो तो जैन धर्म में मानते नहीं थे, उनकी श्रद्धा नहीं थी, वो तो जिसने दर्बन गए अफ्रीका और सिर्फ पादरियों का समागम हो गया क्रिश्चियन पादरियों का, तो क्रिश्चियन धर्म अंगीकार कर रहे थे, इस परिस्थिति में वो उलझन में आए थे, तो वहां से उसने प्रश्न पूछा है, 27 प्रश्न पूछा है एक पत्र में एक चिट्ठी में, तो उसका उत्तर दिया है, और विभिन्न धर्मों के विषय में उसके पत्र प्रश्न निकले हैं, लेकिन अपनी जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी जो खुद ने लिखी है गांधी जी ने, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मेरे जीवन में 3 महात्माओं की असर रही है, जिसमें महात्मा टॉल्स्टॉय, रस्किन और उनका जिंदगीता हमला है, तो स्पष्ट लिखा है कि गुरुकुल है और मेरे जीवन में जहाँ जहाँ भी मैं ईजन में आया हूँ मैंने मार्गदर्शन पाया है उनसे और मैंने सीखा है। लेकिन वो क्या थे, तो पड़ गए थे राजनीति में, और राजनीति एक ऐसी चीज है कि धर्म का एक संदेह नहीं बैठता, एक परस्पर युद्ध की है, क्योंकि राजनीतिक जो होते हैं उनको बहुत से उल्टे छूटे काम करने पड़ते हैं, मायाकारी करने पड़ते हैं, पहले कोई सीधी लाइन का काम भी नहीं है, आज भी ये समझ सकते हैं कि नेताओं के जीवन में क्या रहता है, तो राजनीति और ये जो है धर्म है परस्पर विरुद्ध है, इसलिए हम संभव नहीं कहता है। हाँ हाँ वो वैष्णव थे, पक्के वैष्णव थे, और हमने सुने हैं तो वैष्णव जन को कहने चाहिए नेता का पद है, तो हमेशा वो गाते थे तीर बनाई गाने वो कुछ गाते थे, और वैष्णव थे कुल धर्म से भी वैष्णव थे, और अपने जीवन में तो संप्रदाय इतना संप्रदाय नहीं चला, और जैन धर्म के विषय में श्रीमती जैसे महात्मा का सिंदूर होने के बावजूद भी उसका जो आकर्षण था वो Thank you.